इसको गीता में चर्चा करेंगे, दैट्स गुड थिंग. सो मैं गीता पर्सनली, मैं गीता फैनेटिक हूं, आई लाइक गीता. इसीलिए जहां भी मैं जाता हूं मैं लोगों को ये बोलता हूं कि प्लीज गीता को आप लोग पढ़िए मत, मगर खाइए. जैसे भागवत में भी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, पिबतम भागवतम रसमालयम, श्रीमद भागवत को पियो, पढ़ो मत. कहने का मतलब है कि गीता को इस तरह समझो, इस तरह पढ़ो कि गीता हमारे रोम रोम में, रग रग में बस जाए. अगर कोई किताब हम लोग कह सकते हैं हमारे सनातन धर्म की किताब है, वो गीता है. ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, सारे आचार्य इस बात में सर्वसम्मत हैं, सब आचार्यों का निर्णय है. सो गीता में ऐसी क्या चीज है जो कि इसको बहुत मूल्यवान ग्रंथ बना देती है? वो समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास कितने शास्त्र हैं और शास्त्र होते क्या हैं. सो पहली बात यह कि हर किताब को शास्त्र नहीं बोला जाता. शास्त्रों की परिभाषा है, स्कंद पुराण में शास्त्रों की परिभाषा दी है कि शास्त्र कहते किसे. कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी किताब लिख दे तो हमें उसको नहीं पढ़ना चाहिए. जिस प्रकार अगर कोई भी किताब मार्केट में मिले हम उसको नहीं पढ़ते, हम सीबीएसई की किताब लेते हैं, नहीं. उसी प्रकार शास्त्रों में ही शास्त्रों की परिभाषा दी है. स्कंद पुराण में क्या लिखा है? स्कंद पुराण में लिखा है कि वेदे, स्कंद पुराण हरिवंश पुराण में भी लिखा है, वेदे च रामायणे च इतिहासे पुराणे तथा चार वेद ऋग सामयजुरथर, ये शास्त्र हैं. उसके बाद रामायण, वाल्मीकि रामायण, उसको शास्त्र कहते हैं. वेदे च रामायणे च इतिहासे भारते तथा इतिहास, इतिहास जैसे भारत, महाभारत, महाभारत सबने सुना है, वो शास्त्र है. तीसरा 18 पुराण, उसको शास्त्र कहते हैं. पंचरात्र, पंचरात्रि, पंचरात्रम तथा, पंचरात्र मतलब ऐसी किताबें जिसमें भगवान की पूजा करने की विधि बताई, वो भी सीखनी पड़ती है. वो और वो सारी किताबें जो इन किताबों का अनुगमन कर रही है, वो किताबें जो इन किताबों के अनुसार लिखी गई हैं. जैसे प्रभुपाद जी की छोटी किताबें, उनको भी शास्त्र कहेंगे क्योंकि प्रभुपाद जी ने इन शास्त्रों में से ही प्रमाण लेकर उन किताबों लेकर लिखा है. इसको हम शास्त्र कहते, इति शास्त्र अभिधीयते, इसको हम शास्त्र कहते हैं. इसके अन्यथा जो भी किताबें हैं वो शास्त्र नहीं है. सिंपल. तो मगर अगर आप देखेंगे तो इतने सारे शास्त्र हैं और इतने सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद कुछ फिर निष्कर्ष निकलेगा. अगर आप केवल वेद पढ़ेंगे और पुराण नहीं पढ़ेंगे और धर्मशास्त्र नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो क्या होगा? तो आप इस निष्कर्ष पे आएंगे कि यज्ञ करना जीवन का लक्ष्य है और यज्ञ करने में पड़ जाएंगे, स्वाहा उसमें हो जाएंगे. अगर आप केवल पुराण पढ़ेंगे, वेद नहीं पढ़ेंगे, तो आप इस निष्कर्ष पे आएंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भगवान है. अगर आप केवल धर्म शास्त्र पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे तो अब इस निष्कर्ष पे आओगे कि सत्य ही परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्म, ऐसे निष्कर्ष आएंगे. इसलिए रूपा गोस्वामी ने एक श्लोक लिखा है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र के विधि बिना, उसके बाद क्या है, एकांति के हरि भक्तिर उत्पाते वह ही कल्पते। अगर कोई श्रुति स्मृति पुराण को छोड़कर आधा अधूरा पढ़ता है तो केवल उत्पात होगा, एकांति की हरि भक्ति नहीं आएगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आधी किताब पढूं तो मेरा निष्कर्ष गलत होगा, नहीं? तो अगर मैंने आधी किताब पढ़ी और उस किताब में लिखा है कि देखो मंदिर मत आना, हरे कृष्णा दिस गुड ओम शांति दिस नाइस, अगर उस किताब में लिखा है कि मंदिर मत आना, आपने पढ़ लिया हो मंदिर के बारे में, मंदिर मत आना, आप कहोगे ओ किताब में लिखा है मंदिर मत आना, मगर आपने आधी किताब पढ़ी है और फिर आप उसके आगे पढ़ेंगे ना तो उसके बाद लिखा होगा जूते पहन के, अच्छा गुड, नहीं सब चेंज हो गया, नहीं हो गया, नहीं हो गया। इसीलिए अगर आप क्रिश्चियनिटी, अगर आप बाइबल, बाइबल पढ़िए, किसी ने आप अगर बाइबल पढ़ेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट पूरी बाइबल पढ़ो, अगर आप आधी बाइबल पढ़ोगे, अगर सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ोगे और वो भी उसका भी आधा, तो अब इस निष्कर्ष पे आओगे कि भगवान को बलि चढ़ाओ। तो वो जो जो आपके यहूदी हैं, यहूदी थे पहले, तो वो लोग बलि चढ़ाते थे भगवान को, ओके गुड। मगर उसके बाद क्रिश्चियनिटी में, यहूदियों में एक सेंट है, उनका नाम था इसाया। तो उन्होंने कहा तुम लोग नॉनसेंस हो, भगवान को बलि नहीं चाहिए, भगवान को प्रेम चाहिए तुम्हारा। और उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया उनको, तुमने आधा पढ़ लिया, समझे? सो कभी कभी क्या होता है, आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। या तो कुछ मत जानो या पूरा जानो, आधा मत जानो, क्योंकि आधा जानोगे तो अपना तो कबाड़ा करोगे, दूसरों को और कबाड़ा करोगे, नहीं? तो कुछ लोगों ने कहा कि मूर्ति पूजा मत करो, तो कई लोग हैं ऐसे कहते हैं, नहीं क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो अगर भोग लगाया मंदिर को भगवान को, और भगवान को भोग लगाया तो कोई चूहे खा रहे थे भोग, तो उन्होंने कहा ये कैसे भगवान है जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, जो अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकते, वो हमारी रक्षा क्या करेंगे। मैंने कहा फॉरगेट इट, यू नो सब गलत है, मूर्ति पूजा खंडन कर रहे हैं। मगर एक्चुअली उन्होंने गलत समझ लिया। आपको समझ आ रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो वो जो व्यक्ति है उन्होंने गलत समझ लिया, उन्होंने कहा वो इसलिए गलत समझा क्योंकि भगवान जब अपने मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं तो वो अपने आप को पूरी तरह अपने भक्त को समर्पण कर देते हैं, जिस तरह एक बच्चा अपनी मां को समर्पण कर देता है। तो वो आशा करते हैं कि मेरा भक्त मेरा ध्यान रखे, इसको कहते हैं भक्ति। भगवान इतने कृपा के सागर हैं कि भगवान अपने आप को ही भक्त के हाथों में छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं मेरी सेवा करो, मेरा ध्यान रखो। तो भक्त फिर भगवान की सेवा करता है, भगवान का ध्यान रखता है और उससे उसकी भक्ति में वृद्धि होती है। इसको कहते हैं मूर्ति, जो मूर्ति पूजा की बात करते हैं हम, विग्रह पूजा। भगवान के पांच रूप होते हैं, एक होता है परा, जो भगवान अपने धाम में रहते हैं, ओरिजिनल रूप है, भगवान अपने धाम में रहते हैं। एक होता है व्यू, भगवान वैकुंठ में नारायण संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न के रूप में रहते हैं। कृष्णा सबसे टॉपमोस्ट कृष्णा है, वो गोलोक में रहते हैं। फिर कृष्णा अपने आप को प्रकाशित करते हैं वैकुंठ में नारायण के रूप में, संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न, वो दूसरा रूप है व्यू। तीसरा है विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, और चौथा है लीला करने के लिए आते हैं, लीला अवतार, मत्स्य कूर्मा वराह, नहीं? और पांचवा है अपने विग्रह के रूप में, अर्च विग्रह के रूप में, जैसे ये राधा माधव। तो क्यों आते हैं हमारे सामने, प्रकट होते हैं ऐसे, हमें सेवा करने का मौका देने। भगवान अपने भक्तों को सेवा सुख प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं, कैसा? सेवा का सुख। तो मान लीजिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर हम लोग भगवान को भोग चढ़ा रहे हैं यहां पर, तो हमें कैसे पता लगेगा कि भगवान ने ले लिया भोग या नहीं? भगवान कुछ बोलेंगे, खाना गायब हो जाएगा, हो भी सकता है। अगर आपकी भक्ति बहुत स्ट्रांग है तो हो सकता है, कभी कभी हुआ है। चैतन्य चरितमृत में आता है कि एक भगवान के भक्त थे रघुनंदन, श्रीखंड में, तो भगवान ने सारा खाना खा लिया, छोटे बच्चे थे, तो उनकी माँ ने उनको बहुत डांटा। उन्होंने कहा कि जरूर तुम खा रहे होगे छुपके, तो उनकी माँ को कैसे बिलीव होगा, एक्चुअली भगवान ने ले लिया। इन जनरल नहीं होता, नहीं कहाँ होता है, मगर तो हमें कैसे पता लगेगा कि भगवान ने स्वीकार कर लिया? कैसे कहोगे आप? 5 मिनट बैठोगे, 10 मिनट बैठोगे, ताली बजाओगे, मंत्र बोलोगे, फिर उठा लेते हो। हाउ डू वी नो? क्वेश्चन है, नहीं हमें कुछ पता तो होना चाहिए। सो क्या उत्तर है इसका? विश्वास है, विश्वास है। ओके, विश्वास से गाड़ी नहीं चलती। नहीं, कुछ प्रूफ भी चाहिए ना, हम साइंस स्टूडेंट हैं, हमें प्रूफ चाहिए, हम अंधविश्वास से नहीं चलते। सो उसका एक कारण है, मैंने अभी बताया। भगवान मेरे, अगर आप कहो कि हमें कैसे पता भगवान ने स्वीकार किया है, तो वेदांत देशिका लिख रहे हैं अपनी कमेंट्री में, यू कैन डू देयर, तो कर दो, वहां कर दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, या या। तो हमें कैसे पता लगेगा कि भगवान ने स्वीकार कर लिया? उसका एक ही तरीका है, सिंपल है। भगवान अपने स्वरूप में क्यों प्रकट हुए? हमसे सेवा। हरे कृष्णा, यू टर्न दिस दैट साइड, नो नो नॉट दिस, दैट, ओके थैंक यू। सो उसका सिंपल तरीका है कि भगवान स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? क्वेश्चन ये, भगवान प्रकट ही हुए हैं यहां पर हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर हम भगवान को अर्पण करें भगवान स्वीकार न करें। जितना उत्साहित हम है भगवान को देने के लिए, उससे ज्यादा उत्साहित भगवान है हमसे लेने के लिए। भगवान आए यहां पर है लेने के लिए। मैंने पहले बताया, भगवान के जो अर्च विग्रह है वो भगवान हमसे सेवा लेने के लिए आए हैं, चलो मेरी सेवा करो। तो अगर कोई कुछ भी देता है भगवान लेते हैं, चाहे आपका विश्वास हो या नहीं हो पूरा विश्वास। जैसे हम लोग अर्पण कर रहे हैं, हमारा पूरा विश्वास है कि भगवान लेंगे? नहीं, नहीं ना, 100% विश्वास तो नहीं हम कह सकते, है मगर पूरा नहीं है, फिर भी भगवान ले लेते हैं। क्यों? भगवान इसलिए लेते हैं कि जिससे हमारा विश्वास बढ़ जाए। अगर भगवान नहीं स्वीकार करेंगे और वो प्रसाद नहीं बनेगा, तो हम कभी भी शुद्ध नहीं होंगे। विश्वास होने के बाद भगवान नहीं लेंगे, अगर विश्वास होने के बाद भगवान लेंगे तो हमारा विश्वास बढ़ेगा कैसे, हम शुद्ध कैसे होंगे? समझ गए आप? समझ गए? नहीं समझ गए? स्विमिंग करने के बाद पानी में नहीं कूदा जाता, पानी में कूद के स्विमिंग सीखते, नहीं। उसी प्रकार भगवान स्वीकार करते हैं, हमें प्रसाद देते हैं कि हमारे पाप कटें और हमें विश्वास आ जाए। प्रोवाइडेड अगर आप में कपट नहीं है, सरल हृदय है और आप भगवान को अर्पण कर रहे हो शास्त्रों और साधुओं की विधि के अनुसार, शर्त ये है बस, तो भगवान जरूर स्वीकार करेंगे, उसमें संशय है ही नहीं। एक्चुअली शास्त्रों में लिखा है कि भगवान भोग लगाते वक्त जब किचन में बना रहे हो तभी ले लेते हैं, यहां तक लिखा है शास्त्रों में। जब बना रहे हो गए तभी भगवान सोचेंगे कि वही मेरे लिए बना रहे, और जब भोग लगा के ले जाओ किचन में, तब भगवान को भूख लगेगी तो किचन में भी आ जाएंगे, ऐसा भी होता है। इसलिए कई मंत्र होते हैं दक्षिण भारत में, अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां पे मंत्र होते हैं कुछ, उस मंत्र में बोला जाता है कृष्णा अगर आपको और भूख लगे तो आप किचन में चले जाइए खा लीजिएगा, ऐसा भी है। ऐसे वेदों में मंत्र है। सो ये कभी भी डिवोटी को इस पे कोई संशय होने नहीं चाहिए कि भगवान नहीं लेंगे, समझे, भगवान जरूर लेंगे, इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। सो मैं बता रहा था कि भगवान का जो अर्च विग्रह है ये भगवान की कृपा है, भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं। सो वेल मैं क्यों बता रहा हूं, बाय द वे गीता कहां चली गई, हरे कृष्णा, आई जस्ट लॉस्ट माय ट्रैक, सॉरी, क्यों बता रहा हूं मैं वैसे, आई जस्ट लॉस्ट माय थ्रेड, जनरली आई डोंट लूज बट आई लॉस्ट। एनीबडी रिमेंबर्स, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, शास्त्र पंचरात्रि की विधि में आया। ओके, या तो मैं बता रहा था कि शास्त्रों की अगर विधि नहीं होगी सही, सारे शास्त्र हमने नहीं पढ़े होंगे अच्छी तरह, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और इसी तरह वो जो व्यक्ति है जिन्होंने बोला था कि नहीं, कि मूर्ति पूजा खंडन की थी, मैं किसकी बात कर रहा हूं, किसी को पता है मूर्ति पूजा कौन खंडन करता है? ओके थैंक यू, आई डिडंट स्पीक यू टोल्ड, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, उन्होंने मूर्ति पूजा खंडन की। एक्चुअली वो वेदों के ज्ञाता तो थे मगर उन्होंने आधा ज्ञान ले लिया, उन्होंने केवल वेद पढ़े, पुराण और पंचरात्न नहीं पढ़ा। और जो मैंने भी बताया आपको वो पॉइंट, सिंपल सा पॉइंट समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने कहा देखो भगवान जो अपनी मदद नहीं कर सकता हमारी क्या करेगा, बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। सो इसीलिए आधा अधूरा ज्ञान बहुत डेंजरस होता है। अगर आप गीता भी आधा पढ़ लोगे ना तो उसमें से अधर्म निकल आएगा, धर्म नहीं आएगा उसमें से। ये मनु संहिता में लिखा है, मनु कह रहे हैं कि जिसमें विवेक नहीं है, जिसमें धैर्य नहीं है पूरा पढ़ने के लिए शास्त्र, वो उसी किताब में से अधर्म निकालते हैं। और निकालते हैं लोग, मुझे एक बार मिलिट्री आर्मी में बुलाया था तो वो आर्मी जनरल कह रहा था कि देखो गीता में तो दिया है कि लड़ाई करो, बुलाते ना आर्मी वाले, आप लेक्चर दीजिए हमारे जवानों को, उत्साह दीजिए, पटियाला में हमारे जवानों को उत्साह दीजिए कि वो लड़े। मैं नहीं कहता, एक और व्यक्ति थे वो मुझे बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम लेक्चर देके आए वहां पर, हमने उत्साह दिया, जिस तरह अर्जुन ने युद्ध किया इस तरह तुम भी युद्ध करो। सो आप कह सकते हो गीता में दिया है मगर ये गीता में ये विषय नहीं चल रहा लड़ाई लुड़ी का, बल्कि भगवान ने तो ये भी बोल दिया अर्जुन तुम लड़ाई करो तो भी अच्छा, नहीं करो तो भी अच्छा है, ये लड़ाई तो होगी, तुम नहीं करोगे तुम्हारे लिए बुरा है, सोच लो। गीता का संदेश युद्ध करना नहीं है, गीता का संदेश है आत्मज्ञान। युद्ध तो एक बहाना था बस। वो श्लोक है गीता में एक, माम अनुस्मर युद्धे च, कौन सा वर्ष प्लान है, तस्मात सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मर युद्धे च, पूरा श्लोक भूल गया, मैं अर्पिता मनोबुद्धिर यो माम स्मरति नित्यशः, या दिस इज अ वर्स। कृष्णा कह रहे हैं हमेशा हर काल में, अर्जुन को कह रहे हैं अर्जुन हमेशा मेरा स्मरण रखो, तस्मात सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मर युद्धे च, मेरा हमेशा स्मरण करो युद्ध करते हुए। मैं अर्पिता मनोबुद्धिर, अपने मन और बुद्धि मुझे समर्पण कर दो। स्मरति नित्यशः, इस तरह से सदैव मेरा स्मरण करते रहो। तो कुछ लोग कहते हैं देखो भगवान कह रहे हैं युद्ध करते हुए स्मरण करो, नहीं, एक्चुअली भगवान युद्ध करने को नहीं कह रहे, भगवान ने कह रहे हैं, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं अर्जुन तुम युद्ध करो क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य है ये। हमें कह रहे हैं कि तुम, हम लोग अपना कर्तव्य करते रहे और भगवान का स्मरण करते रहे। युद्ध करना गीता का लक्ष्य नहीं है, सॉरी। इसलिए कोई भी शास्त्र पढ़ते हम तो उसमें छह चीजें देखी जाती हैं, बता रहा था, उसको कहते हैं तात्पर्य लिंगम। कोई भी किताब पढ़ोगे तो उसमें छह चीजें, छह, इसको किताब पढ़ने का तरीका होता है एक, ऐसी किताब नहीं पढ़ी जाती सारी। गीता में सबसे पहले कौन सा अध्याय पढ़ना चाहिए? वेल, आप कहोगे पहला अध्याय नहीं, मगर एक्चुअली अगर हम वैष्णवीय तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है गीता में सबसे पहले आखिरी के दो अध्याय पढ़ने चाहिए, ऐसा भी है शास्त्रों में, 17वां और 18वां अध्याय। गीता का निष्कर्ष कहां है? 18वें अध्याय में नहीं, सर्वधरान परितज्य वामे काम शरणम व्रज। ओके गुड, तो किताब को पढ़ने का तरीका होता है, छह चीजें हैं। अगर कोई भी किताब पढ़ो आप उसमें छह चीजें देखो तब उसको किताब का मतलब सही निकल आएगा, वरना गलत निकलेगा 100%। तो क्या है? उपसमाहार, उपक्रम उपसमाहारस च, उसकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है, उस किताब की शुरुआत कहां से है? उपक्रम शुरुआत। गीता का पहला श्लोक क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदयोत्सव माम का पांडवाचार्य किम करोत् संजय, ये गीता का पहला श्लोक है। है या नहीं? है भी और नहीं भी। ये गीता का पहला श्लोक है भी और नहीं भी। गीता शुरू यहां से होती है, मगर एक्चुअली गीता यहां से शुरू नहीं होती, क्योंकि भगवान के शब्द नहीं है ये। गीता मतलब भगवान के शब्द। गीता का पहला श्लोक कहां से है? या दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, यहां से गीता शुरू होती है। यह श्लोक तो किसने बोला है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धृतराष्ट्र। सो वैसे तो प्रिंटिंग में तो यह श्लोक है, कह सकते हो यह श्लोक है, मगर रियली में अगर आप कोई पूछे गीता कहां से शुरू हो रही है, भगवान कहां से उपदेश देना शुरू कर रहे हैं, वो दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। ओके गुड, तो पहला श्लोक चलो हम ये मानते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म से शुरुआत हो रही है पहले श्लोक की, स्टार्टिंग देखो और एंड देखो, उपसंहार। आखिरी श्लोक क्या है? आखिरी श्लोक है यत्र योगेश्वरो कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर भूतेर नीतिर्मम। संजय कह रहे हैं कि जहां कृष्णा है, जहां अर्जुन जैसे भक्त हैं, वह जरूर विजय है, वह जरूर नीति है, और वही श्री है, नहीं ऐश्वर्य। सो क्या हुआ? शुरुआत धर्म से हुई, अंत कृष्ण से हुई, नहीं, और कृष्ण के भक्त से। तो हमें क्या पता लगा कि धर्म क्या है? कृष्ण की भक्ति करना। जो भी आप पढ़ोगे गीता में सब इस दृष्टिकोण से देखोगे, समझे? तो ये दो चीजें देखना है, पहले उपसमार उपक्रम स्टार्टिंग और एंड, फिर उसके बाद देखना है हमें उपसमार उपक्रमश्च अभ्यासश्च। अभ्यास मतलब जो चीज रिपीट हो रही है बार बार, किताब में एक चीज ऑथर रिपीट करता है ना बार बार, उसको कहते हैं अभ्यास। क्या चीज रिपीट हो रही है बार बार गीता में? भगवान बार बार क्या कह रहे हैं? भगवान हर अध्याय के अंत में भक्ति के बारे में बता रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए 5वें अध्याय का आखिरी श्लोक क्या है? वो कहने की मैं गीता 5वें अध्याय का आखिरी श्लोक क्या है? भोक्तारा मैं तपसम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातवा माम शांति मृच्छति। जो मुझे भगवान जानता है उसको शांति मिलेगी, अंत अध्याय का रिपीट। उसके 6ठे अध्याय का आखिरी श्लोक क्या है? नहीं पता? What's that verse? योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतेर अंतरात्मना श्रद्धावान भजते हो माम समयुक्त तमो मतः। 6ठे अध्याय का आखिरी श्लोक, सबसे टॉप मोस्ट योगी कौन है? जिसकी श्रद्धा मुझ में है। फिर से रिपीट हो गया, नहीं, मैं भगवान हूं, मुझ में श्रद्धा रखो। 5वें अध्याय में भी भगवान ने बोला अंत में, 6ठे अध्याय में भी भगवान ने ही बोला। ओके, 7वें अध्याय का आखिरी श्लोक क्या है? आप लोगों को गीता, अरे गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तर है। जिसके पास गीता है उसको और कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही क्या है? फॉरगेट इट। ओके, लेट मी जस्ट टेल यू, 7वें अध्याय का आखिरी श्लोक एंड प्रूफ टू यू कि भगवान हमेशा हमेशा अपनी बात ही कर रहे हैं। आखिरी श्लोक है 7वें अध्याय का, साधि भूतम अधिदेव माम साधि यज्ञम चवे विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतस। जो अंत में जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करता है वो मुझे निश्चित प्राप्त करता है भक्ति से। नहीं फिर से अपनी चर्चा कर रहे हैं भगवान, देख रहे हो बार बार भगवान क्या रिपीट कर रहे हैं। अगर मैं पूरी बात बोल दूं आपको, पूरी बात मैं सपोज आपको बोलूं कि देखो प्रोग्राम में आओ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, यहां पे प्रसाद मिलेगा, सब कुछ बोल दूं, और फिर अंत में आपको बोलूं देखो प्रोग्राम बहुत अच्छा था मगर मजा नहीं आया, नहीं तो कौन सी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरी लेक्चर या अंत की बात? एंड में जो मैंने बोला नहीं, कह गया यार लेक्चर तो अच्छा था, बिल्कुल एंड में पानी फेर दिया इन्होंने। सबसे एंड में भगवान कंक्लूजन दे रहे, बार बार बोल रहे कि मेरे पास आठवें अध्याय का आखिरी श्लोक क्या है, दैट्स इंपॉर्टेंट वर्स, आठवें अध्याय का आखिरी श्लोक, दैट्स इंपॉर्टेंट। वेदेशु यज्ञेशु तपसु च एव दानेषु यत् पुण्यफलम् प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम् उपैति चाद्यम्। दिस इज गुड वर्स। यज्ञों में, तपस्या में, वेदों में जो भी कुछ है, दान में जो भी पुण्य दिए, अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा उससे करोड़ों ज्यादा पुण्य मेरी भक्ति करने से मिलेंगे। फिर से अपने बारे में, भक्ति के बारे में बोल दिया। तो ऐसे आप एक्सरसाइज करो घर जाकर, अब सारे अध्याय को आखिरी श्लोक पढ़ना, नौवें अध्याय का आखिरी श्लोक पढ़ना, मनमना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, नौवें अध्याय का चौथा श्लोक आखिरी श्लोक, ग्यारहवें अध्याय का आखिरी श्लोक पढ़ना, क्या है वो वर्स एट वर्स इलेवेंथ लास्ट, प्रवेश तुम च परंतप, या दैट्स या, उसमें भी कृष्ण अपनी बात कर रहे हैं। जो डू दैट एक्सरसाइज जाकर, सबको आखिरी श्लोक देखना, भगवान हर श्लोक हर अध्याय के अंत में अपने ऊपर खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अंत कहां होना चाहिए किसी का भी, कृष्ण के चरणों में। इसलिए गीता के हर अध्याय का अंत कृष्ण के चरणों में। नहीं, अंत का मतलब समझते हो आप लोग, अंत का मतलब क्या होता है? अंत का मतलब ये नहीं होता, वेदांत कहते हैं हम, वेदांत। अंत का मतलब संस्कृत में देखोगे तो एक तो अंत भी होता है, अंत के तीन मतलब होते हैं संस्कृत में, अगर निरुक्त देखोगे आप, एक तो हुआ अंत कर देना, दूसरा मतलब हुआ अंत का कि जैसे मैंने पूरा लेक्चर दिया फिर मैंने बोला देखो भी सारे बात की एक बात अंत में मैं ये बताने वाला हूं, समझे? तो अंत का मतलब हुआ कि इसका निष्कर्ष क्या है, यह भी हो गया ना, तो अंत का मतलब निष्कर्ष भी होता है। इसलिए हर अध्याय का अंत उस अध्याय का निष्कर्ष है, समझ गए? और अंत का एक और मतलब हुआ कि भाई जो भी मैंने बताया तुम्हें, मैंने पूरा लेक्चर दिया प्रसाद लेने पे, फिर मैंने बताया देखो प्रसाद लेना असली चीज नहीं है, अंत में मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि भगवान को प्रसन्न करना असली चीज है प्रसाद लेने के द्वारा, समझे? तो अंत का मतलब यह भी हुआ कि उसकी चेष्टा क्या है बताने की, कहना क्या चाहता हूं मैं उसके पीछे। अब मैंने पूरा लेक्चर दिया, आपको क्वेश्चन पूछेगा भैया हमें बताओ कहना क्या चाहते हो, अंत में हमें यह बता दो, यही पूछते हैं ना। अब मैं ऐसे बोल रहा हूं तो कोई क्वेश्चन पूछ लेगा एंड में, भैया आप तो बहुत चिल्लाते हो, यह बताओ बताना क्या चाहते हो। तो अंत का मतलब हुआ कि उसके अंदर क्या है, चेष्टा क्या है आपकी, बोलने का अभिप्राय क्या है। अभिप्राय समझते हैं आप लोग, सबको समझ आ रहा है ना अभिप्राय शब्द, चेष्टा अभिप्राय उद्देश्य हेतु प्रयोजन, बहुत सारे शब्द हैं। सो अंत के तीन मतलब हुए। इसलिए जब हम गीता का अंत, हर अध्याय का अंत का श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें तीनों मतलब आ जाते हैं कि निष्कर्ष क्या है। भगवान हर अध्याय का निष्कर्ष अपने चरणों पे ला रहे हैं, भगवान हर अध्याय में अंत में भगवान को चेष्टा है, गीता बोलने की चेष्टा युद्ध करने के लिए नहीं है, गीता बोलने की चेष्टा भक्ति कराने की। समझ गया नहीं समझ गया? अब समझ आ गया, इसको कहते हैं अभ्यास, बार बार भक्ति रिपीट हो रही है। इसका मतलब भगवद गीता का टॉपिक क्या है, भक्ति, ये तीसरी चीज देखी जाती है। चौथी चीज देखी जाती है उपसमानुपक्रमश्च अभ्यासश्च अपूर्वता फलम। अपूर्वता फलम होता है कि फल क्या है गीता पढ़ने का, गीता पढ़ने का फल क्या है। सो हर शास्त्र में फल दिया होता है, नहीं फल दिया होता है। आप कोई भी, आप कोई भी गुट, आपका आपको पता गुटके क्या होते हैं, लोग गुटके पढ़ते हैं हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा, फिर एंड में लिखा होता है कि जो जो ये पढ़ेगा उसको पुत्र होगा, नहीं ऐसे ही होता है, जो गावे फल पावे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे ओके गुरु, मैं भक्ति करूंगा क्योंकि मेरे तन का कष्ट मिट जाएगा, इसको कहते हैं फल। हर स्तुति का कुछ ना कुछ फल होता है। लोग गोवर्धन परिक्रमा करने जाते हैं, दूध की परिक्रमा करते हैं, कुछ लोग देखा है आपने जो उनको प्रॉब्लम होती है वो करते हैं, हाँ भाई परिक्रमा करने से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लोग हरिद्वार जाते हैं पाप धोने के लिए, लोग कहीं यज्ञ करते हैं तो यज्ञों का फल होता है, जो यज्ञ करेगा उसको ऐसी प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इसको कहते हैं फल। गीता पढ़ने का फल क्या है, कौन सा श्लोक है, जस्ट लिसन टू मी फॉरगेट इट। गीता पढ़ने का फल क्या है, गीता पढ़ने का फल है आखिरी श्लोक कृष्णा कह रहे हैं, युर्गेश्वरो कृष्ण यत् पार्थो धनुर्धर, जो जहां पे मेरी गीता पढ़ी जाएगी वहां पे निश्चित रूप से श्री होगा। श्री मतलब ऐश्वर्य, श्री मतलब पैसे नहीं, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब होता है भक्तों का ऐश्वर्य क्या है, भक्तों का धन क्या है, भक्तों का धन प्रेम धन है, नहीं मैंने बताया था, जहां पे गीता होगी वहां पे प्रेम होगा भगवान के लिए, तत्र श्री विजय, और वहां पे विजय होगी, किस चीज को विजय कर लेता है भक्त, मृत्यु को, वहां पे मृत्यु नहीं होती, नीति, वहां पे नीति होगी, नीति मतलब, नीति मतलब समझते हो आप लोग, नैतिकता, यहां पे असली नैतिकता क्या है, असली नैतिकता है भक्तों को पता है कि असली नैतिकता है कि सदैव भगवान का स्मरण करना, कभी भगवान को नहीं भूलना, यही नैतिकता का आधार है, वहां पे ये फल है गीता पढ़ने का। चौथी हो गई, पांचवी चीज हो गई अर्थ, अर्थवाद, अर्थवाद आप पढ़ते हो नाम अपराध में, अर्थवाद का आरोप करना, उसका मतलब पता है क्या होता है, उसका मतलब शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, अर्थवाद का मतलब होता है प्रशंसा, प्रशंसा। तो हर शास्त्र में उस शास्त्र की प्रशंसा भी की जाती है, तो वो भी देखना होता है। जैसे उदाहरण के लिए उपनिषदों में एक श्लोक आता है, द्वासपूर्ण सायोज्य सखाया समान अमेतद वृक्षे पतन वसंती या पतंती दुष्टम यदा पश्यमन्यमीशम अस्य महीना मानम इति वीत शोका। तो उपनिषदों में लिखा है वेरी नाइस वर्स कि एक वृक्ष पे दो पक्षी है और एक पक्षी खाना फल खा रहा है, दूसरा पक्षी उसको देख रहा है, वो एक पक्षी कौन है जो फल खा रहा है, वो हम है, दूसरा पक्षी परमात्मा है। जब वो पक्षी इस परमात्मा की महिमा देख लेता है तब उसके सारे वीत राग शोक, उसके सारे राग उसके शोक नष्ट हो जाते हैं। तो उसी श्लोक में श्लोक की महिमा दी है, महिमा ये है कि अगर कोई भगवान की महिमा समझ लेगा तो उसके सारे शोक खत्म हो जाएंगे। गीता की महिमा क्या है, गीता में गीता की महिमा दी हुई है, वो भी हमें देखनी पड़ेगी महिमा कहां दी है। सो गीता में भगवान खुद कह रहे हैं अपने गीता की महिमा, पता है कौन सा श्लोक है, वो कौन सा वर्ष पिला जो कि जो बुद्धि से पढ़ता है, 18वें अध्याय में कृष्णा श्लोक कह रहे हैं कि जो मेरी गीता पढ़ेगा वो परम बुद्धिमान व्यक्ति, मेरी पूजा मेरी गीता पढ़ने से होती है, कृष्ण खुद समझा रहे हैं, श्लोक 18वें अध्याय में आता है, जानाति पुरुषोत्तमा स सर्व विभजति माम सर्व भावे न भारताया। बुद्धिमान स्यात, कैन यू जस्ट फाइंड, आई विल जस्ट टेल यू, भगवान कह रहे हैं कि मेरी बुद्धिमान व्यक्ति मेरी पूजा गीता पढ़ने से करता है। 18वें अध्याय में भगवान की असली पूजा गीता पढ़ने से होती है, एक अविल सर्च दैट श्लोक, ये गीता की महिमा है। गीता की महिमा यह है कि सिंपली गीता पढ़ने से भगवान की पूजा हो रही है, गीता का हर श्लोक भगवान की आरती है, गीता का हर श्लोक भगवान को फूल चढ़ाना है। कई लोग साउथ इंडिया में करते हैं ऐसा है, आप दक्षिण भारत में जाएंगे वो एक श्लोक पढ़ते हैं और भगवान को तुलसी अर्पण करते हैं, फिर दूसरा श्लोक पढ़ते हैं फिर भगवान को तुलसी अर्पण करते हैं, ऐसे गीता पढ़ी जाती है, कई लोग पढ़ते हैं कई संप्रदाय में। दैट्स नाइस। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि गीता का हर शब्द एक फूल है जो भगवान को अर्पण किया जाता है। सो ये महिमा है गीता की, गीता के श्लोक श्लोक नहीं है, गीता के श्लोक फूल हैं। इन फूलों से अच्छे हैं ये फूल, तो सड़ जाएंगे, ये फूल कभी नहीं सड़ेंगे क्योंकि नित्य है। या ये श्लोक है 18वें अध्याय का 70th verse। अध्येशयते च इमं धर्मयं संवादं आवयो ज्ञान यज्ञेन तेन अहम् इष्टस्यामिति मे मति। वेरी नाइस वर्स। एंड आई डिक्लेयर दैट ही हु स्टडीज दिस सेक्रेट कन्वर्सेशन ऑफ आर्स वर्शिप मी बाय हिज इंटेलिजेंस। कृष्णा कह रहे हैं कि जो ये गीता पढ़ेगा मेरी, वो मेरी पूजा करेगा अपनी बुद्धि के द्वारा। ये गीता की महिमा हो गई नहीं हो गई, समझे? इसको कहते हैं अर्थवाद, ये अर्थवाद है गीता का। और कृष्ण यहां पे भी कह रहे हैं यदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विधास्यति, जो ये गीता मेरे भक्तों को बताएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। आप तो सुन रहे हो, तो आप पूजा कर रहे हो भगवान की, नहीं, मगर आपसे ज्यादा मुझे फायदा हो रहा है क्योंकि भगवान कह रहे हैं जो ये गीता मेरे भक्तों को बताएगा उसका क्या होगा, उसकी गारंटी है कि वो इस जन्म के बाद मेरे पास आ जाएगा। सो आप जाओ नहीं जाओ, मैं तो जा रहा हूं, टाटा बाय बाय। आप लोग भी गीता बताओ लोगों को, तो आप भी चले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पढ़ो बोलो, पढ़ो बोलो, सिंपल है, सिंपल है। अगर आपको याद नहीं है तो खोल के बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने भी ऐसी सीखी है, मैं भी खोल खोल के बस बोलता रहता था लोगों को, नहीं आती थी तो मैं कहता था जस्ट एक मिनट, खोल के पढ़ा पढ़ा देता था उसको, धीरे धीरे मुझे याद हो गई उसमें क्या है। सो ये अर्थवाद कहते हैं। तो कितनी चीजें हो गई, पांच 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 हो गई। और छठी चीज जो किताब में देखी जाती है उसको कहते हैं उपपत्ति। उपपत्ति, उपपत्ति मतलब होता है युक्ति, लॉजिक। हर किताब में कुछ, जो ऑथर जब कोई किताब लिखता है तो उसमें कुछ ना कुछ तर्क होता है ना, ऐसी कुछ भी थोड़ी ना किताब लिख जाती है। जैसे उपन्यास है, उपन्यास पता है, उपन्यास लिखते हैं लोग, स्टोरी राइट, स्टोरी लिखते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ तर्क है। तर्क क्या है कि लोगों को एंटरटेनमेंट देना है ना। भगवद गीता का तर्क क्या है यह समझना पड़ेगा। तर्क क्या है भगवद गीता का, भगवद गीता में तर्क क्या है? भगवद गीता का तर्क है कि कोई भी श्लोक पढ़ो वो अंतिम कहां आना चाहिए, वो अंतिम आना चाहिए सर्वधर्मान परित्यज्य पे, नहीं, ये तर्क है। सारे श्लोक पढ़ के अगर आप इस श्लोक से कनेक्ट करोगे तो आपको पता लगेगा सारे श्लोक में एक ही बात चल रही है। कृष्णा कह रहे हैं सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। सब कुछ छोड़ने का मतलब है कि सब कुछ तुच्छ बना के, मैंने समझाया था, छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुच्छ बना दो। इंपॉर्टेंट मत रखो अपनी लाइफ में चीजों को। कपड़े पहन रहे हो मगर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके बंगलो है मगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, गाड़ी भी हो सकती है मगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? कृष्ण। हर श्लोक में यही है, इसको कहते हैं उपपत्ति, लॉजिक, तर्क क्या चल रहा है। अगर आप ये छह चीजें देखोगे, इन छह चीजों को बोलते हैं तात्पर्य लिंगम। ये बलदेव विद्याभूषण लिख रहे हैं, किताब को पढ़ने का तरीका यह होता है तब हमें गीता समझ आएगी, वरना 100% हम गीता पढ़ के कूड़ा समझेंगे, अपने मन से कुछ ना कुछ निकालेंगे, नहीं समझ आएगा, कभी भी समझ नहीं आएगा। वो तो प्रभुपाद ने कमेंट्री लग दी इसलिए हमें इजी हो जाता है, प्रभुपाद जी की टीका से हमें समझना आसान हो जाता है। कब बिना प्रभुपाद की टीका के पढ़ोगे तो असंभव है इस किताब को समझना। फिर तो कोई कहेगा कर्मयोग, कोई कहेगा भक्ति योग, कोई कहेगा ज्ञान योग, कोई कहेगा धर्म, कोई कहेगा, महात्मा गांधी कहेंगे हम स्वधर्मो धर्मा, लोकमान्य तिलक कहेंगे अनासक्ति, वल्लभ भाई पटेल कहेंगे अपनी फिलॉसफी। सबने गीता पे लिखा है, कमेंट्री नहीं पढ़ी है आप लोगों ने? आज सबकी पढ़ के देखो, सबने अपनी अपनी गीता लिखी हुई है। इनफैक्ट कहीं फॉरनर्स ने गीता लिखी है, एक फॉरनर में पढ़ रहा था उसकी गीता, नाम भूल गया उसका, वो पता क्या लिखता है शुरू में, लिखता है वो पहली लाइन कि देखो मेरे हिसाब से गीता में 700 श्लोक नहीं है, मेरे हिसाब से सिर्फ 300 श्लोक हैं, बाकी श्लोक बेकार है। गीता शुरू यहां से होती है, फिर उसके बाद लिखते, देखो एक्चुअली कृष्णा इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, इतना बोलने की जरूरत ही क्या थी। वो उसकी इंटेलिजेंस है, वो स्कॉलर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, पीएचडी संस्कृत करी हुई है उसने, वो इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचा? वो इसलिए, वो पता है इस गलत निष्कर्ष पे क्यों पहुंचा? क्योंकि उसने सिस्टम फॉलो नहीं किया जो हम जो बता रहे हैं। नहीं, ये छह चीजें उसने देखी नहीं, इसलिए वो अपने गलत गलत आइडिया उसमें निकाल लिया उसने। इसलिए अगर आप शास्त्र पढ़ोगे आधे पौने, ऐसे नहीं पढ़ोगे तो अंत में बोलोगे भगवान निराकार है, आ जाएगा ये। अगर आपने ऐसे शास्त्र नहीं पढ़े तो अंत में बोलोगे ओ मूर्ति पूजा बेकार है। और ये सारी चीजें एक गुरु से सीखनी पड़ती हैं, ये सिस्टम होता है गीता पढ़ने का। सो या गीता का परम श्लोक, चरम श्लोक क्या है पता है सबको? सब कुछ पढ़ के अगर कोई एक बात ध्यान रखना चाहते हो गीता में तो कौन सा है? मैंने बताया अभी, आपको पता होगा, सर्वधरान परित्यज्य अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा वचसा। अर्जुन सारे धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ जाओ। यहां पे धर्म का मतलब क्या है? क्या क्या धर्म का मतलब क्या है? सारे धर्मों को त्याग दो, अपने माता पिता का आदर करना छोड़ दो, वो भी धर्म है नहीं है, छोड़ दे क्या? आज से मैं गीता पढ़ूंगा, बोलूंगा डैड गेट लॉस्ट, सारे धर्मों को त्याग दो। कृष्णा कह रहे हैं, और पहले हो जाता है जब नए नए इस्कॉन में आते हैं तो ऐसे ही होता है। जब मैंने पहली बार गीता पढ़ी थी, मैंने कहा सर धर्म त्यज्य, ओके गुड। घर में गया, मैंने कहा तो आप सब असुर हो, निकल जाओ मेरे घर से और निकल जाओ अपने घर से। ऐसे ही होता है, नहीं नए नए में तो ऐसे ही होता है। मगर कृष्णा इतने बेवकूफ नहीं है, सारे धर्मों को त्याग दो का मतलब नहीं कि सारे धर्मों को त्याग दो। आप देख रहे हो, अगर ये छह चीजें तो हैं, मगर इसके साथ एक और चीज चाहिए गीता को समझने के लिए, वो है डिक्शनरी, शब्दों की डिक्शनरी। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योति, निरुक्त, छंद, तो ये तो छह चीजें हो गई। उसके साथ एक और चीज कि उस शब्दों का मतलब क्या है वहां पर। हर शब्द का अलग अलग जगह अलग अलग मतलब होता है। यहां पर धर्म का मतलब हमें नहीं ले सकते कि सारे धर्मों को त्याग दो, समझ गए? साधारण परिभाषा नहीं ले सकते हम। अगर आप संस्कृत की डिक्शनरी देखोगे तो एक 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 कैसे बताऊं, मतलब नंबर वन, एक एक के छह मतलब है। जैसे मैं कहूं कि मैं और वो व्यक्ति एक है, उसका मतलब क्या समझोगे? मैं और मेरी प्रेमिका एक हो गए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमें बहुत प्रेम है, नहीं? तो एक का मतलब प्रेम भी होता है, और एक का मतलब होता है कि एक भी कर देना, एक दूसरे में मिला देना। ये मिठाई और ये मिठाई एक हो गई, उसका मतलब क्या है? मैंने उसके अंदर उसको मिला दिया, ये भी मतलब होता है। एक का मतलब ये भी होता है कि मैं और भगवान एक हो गए। शास्त्रों में लिखा है आत्मा परमात्मा एक हो जाती है, तो सारे गुरु कहते हैं देखो अल्टीमेटली भगवान में लीन हो जाओ। मगर एक का मतलब संस्कृत में क्या होता है? आत्मा परमात्मा एक होने का मतलब है कि आप भगवान कृष्ण की और मेरी इच्छा एक हो गई है, विचार में एक हो गए, शरीर में एक नहीं हुए, तो विचारों में भी एक होना उसको भी एक कह देते हैं। तो इस ये तीन मतलब हुए एक के, तीन मतलब और है, आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स। हर शब्द का मतलब होता है। यहां पे धर्म का मतलब क्या है? तो संस्कृत में धर्म के कई मतलब है। यहां धर्म का एक मतलब होता है कि यहां पे मतलब है धर्म का कि वो सारी क्रियाएं जो भक्ति के अनुकूल हैं, जो भक्ति को बढ़ाती हैं, उसको कहते हैं धर्म। धर्म का एक मतलब है पुण्य, पुण्य, और धर्म का दूसरा मतलब है भक्ति। संस्कृत एक डिक्शनरी है, उसका नाम है मेधातिथि अमरकोश, उसमें ऐसा लिखा है, आचार्य लिख रहे हैं इसकी कमेंट्री में। धर्म का मतलब है पुण्य, भी कहते हैं धर्म का मतलब, नहीं धर्म से क्या मिलता है लोगों को? पुण्य। धर्म का मतलब अच्छे कर्म भी होता है, धर्म का मतलब नैतिकता भी होता है, धर्म का मतलब भक्ति भी होता है, और धर्म का मतलब होता है वो सारी क्रियाएं जो भक्ति में हमें बढ़ने में आगे मदद कर रही है। तो यहां पे कृष्णा क्या कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज, सारे धर्मों को त्याग दो। कहने का मतलब है सारे पुण्य, जितनी भी क्रियाएं जो पुण्य की क्रियाएं, सबको सबको त्याग दो, सबको इंपॉर्टेंस मत दो, जो भी भक्ति में रुकावट है उसको छोड़ दो। यहां पे कृष्णा ये समझा रहे हैं, जो धर्म भक्ति में रुकावट बनेगी उसको हटा दो। तो धर्म का मतलब मैंने बताया था पुण्य, धर्म में क्या चर्चा होती है, पुण्य पाप की ना। कृष्णा कह रहे हैं वो पुण्य वो पाप छोड़ दो जो भक्ति में रुकावट बन रहे, करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई अच्छा काम है वो करने से भक्ति बढ़ रही है तो बहुत अच्छा है, वो अच्छा काम करने से भक्ति रुक रही है तो मत करो, फॉरगेट इट। या उसको ऐसे करो कि भक्ति में रुकावट ना बने। जैसे उदाहरण के लिए आपके श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध होते हैं ना, आपको घर में करना पड़ता है, तो उसमें लोग पंडितों को बुलाते हैं। अब हम लोग तो पंडितों को नहीं बुलाते, हम तो सोचेंगे वैष्णवों को बुलाएं, मगर कभी कभी करना भी पड़ता है, क्योंकि घर वाले कहते हैं वही करना है, तो उनको दिखाने के लिए हमें करना पड़ता है बाहर बाहर से, मगर अंदर से हम उससे सहमत हम नहीं होते। सो सारे धर्मों को छोड़ने का मतलब है कि अपने हृदय से उसको छोड़ दो। हो सकता है तुम बाहर से दिखाने के लिए कर रहे हो, हृदय से मत करो उसको, वल्लभ बचा रहे इसलिए। उससे आसक्ति छोड़ दो, आसक्ति छोड़ दो धर्म से, समझ गए। कर सकते हो मगर आसक्ति छोड़ दो। अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करो, अगर माता पिता भक्त नहीं है तो क्या करना है, तो आदर करना है नहीं करना है, नहीं। भगवान कह रहे हैं सारे धर्मों को छोड़ दो, तो भक्त नहीं है, अगर भक्त नहीं है और भक्तों जो भक्त नहीं है उसका आदर करोगे तो गड़बड़ है, भक्ति खराब होगी, इसलिए छोड़ दे क्या, नहीं। कृष्णा कह रहे हैं उससे आसक्ति छोड़ दो, बाहर बाहर से आदर करो, हृदय के अंदर नहीं। दैट्स इट, समझ गए। जैसे आपके यहां कोई रिश्तेदार आते हैं, कितने सारे आपके घर में, हर तो रिश्तेदार भक्त नहीं होता। शास्त्रों में क्या लिखा है कि अब भक्तों के साथ संग नहीं करना चाहिए, मगर धर्म यह भी कहता है कि जो अगर आपके यहां अतिथि आए तो उसका आदर करना चाहिए। अतिथि भगवान का स्वरूप है, शास्त्रों में लिखा है, मनु संहिता में लिखा है, तो क्या करें। अब धर्म कह रहे अतिथि भगवान का स्वरूप है, भक्ति में अगर आप वो अगर वो भगवान का स्वरूप भक्त नहीं है तो प्रॉब्लम है नहीं, तुम्हारी भक्ति खराब हो जाएगी, तो क्या करें, प्रॉब्लम हो गई नहीं हो गई, तब कृष्ण की गीता काम आएगी। कृष्णा कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दो। कहने का मतलब है कि वो अतिथि का आदर करो मगर उससे आसक्ति छोड़ दो, बाहर बाहर से करो अंदर से मत करो, समझ गए। कंक्लूजन आ गया, तो आपके यहां कोई गेस्ट आया, कोई रिश्तेदार आया, बाहर बाहर से आ जाओ, उसका आदर करो, अपने रूम में जाओ, अपनी पत्नी को जल्दी भगाओ यार, इसको क्या हो गया, बाहर से मत बोलो, हृदय में रखो इसको, हृदय में वो नहीं घुस जाए, हृदय में घुस गया तो प्रॉब्लम है, बाहर से कुछ भी वो कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, अपने बॉस को तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, बॉस को नहीं करोगे निकाल देगा वो। शास्त्रों में धर्म शास्त्र है कि जो अपने से सुपीरियर है उसका आदर, जो आयु में ज्ञान में पोस्ट में आपसे ऊपर है उसका आदर करना चाहिए, तो ठीक है, गुड। सो मगर कृष्ण की एडवाइस के अनुसार ये धर्म है, मगर ये भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। अगर मैं उसका आदर अपने हार्ट से करने लगूंगा तो मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी, मेरी सारी भावना उसमें चली जाएंगी, इसलिए मैं ऊपर ऊपर से करूंगा, वो धर्म पालन करूंगा मगर आसक्ति के साथ नहीं करूंगा, बाहर बाहर से कर दूंगा बस, अंदर से नहीं करूंगा, समझ गए। ये होता है सर्वधर्मान परित्यज्य। इस श्लोक को समझना इतना आसान नहीं है, इस श्लोक को समझने के लिए रामानुजाचार्य के शिष्य जो है पराशर भट्ट,
उन्होंने एक साल तपस्या की थी। रामानुचार्य ने बोला मैं तुम्हें गीता का निष्कर्ष बताऊंगा, तुम एक साल तपस्या करके आओ। और पराशर भट्ट ने एक साल बस एक बार भिक्षा लेके खाते थे, वो पांच घर में मांगते थे खाना, भिक्षा में खाना मिला तो खाया वरना नहीं खाया, एक साल इस तरह रोड पे। फिर जब वो गए रामानुचार्य के पास तो रामानुचार्य ने बताया कि गीता का चरम श्लोक कौन सा है, सर्वधर्मान परित्यज्य, जो अभी हमें फ्री में मिल गया है, हमें तो फ्री में पता लग रहा है ना ये श्लोक, ये भगवद्गीता का निष्कर्ष है, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, ये किसने बताया है हमें, ये रामानुचार्य के गुरु यमुनाचार्य उन्होंने बताया है। अगर आपको लिखना है तो ये लिख सकते हैं, यमुनाचार्य ने बताया हमें, यमुनाचार्य रामानुजाचार्य के गुरु, उन्होंने गीता लिखी है, गीता का तात्पर्य उन्होंने सबसे पहले बताया, गीता का निष्कर्ष है। फिर और संप्रदाय में प्रभुपाद जी ने उसको फॉलो करते हुए इस तरह गीता की पेटी का लिखी, हमारे आचार्यों ने उसको फॉलो करते हुए लिखा है। सो ओके, समझ गए सर्वधर्म परित्यज्य। सो मैं क्यों बता रहा हूं यहां उत्तर, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि किसी भी किताब को पढ़ना बड़ा मुश्किल है, नहीं अगर आप ऐसे गीता प्रेस की किताब खरीद के पढ़ लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा। इसलिए साधु संघ में गीता पढ़नी होती है, इसलिए हर शब्द का मतलब पता होना चाहिए, धर्म का मतलब यहां पे ही है। सर्वधर्म परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज, मेरी शरण ले लो, अहम तो सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पापों से मुक्त करूंगा। आप सोचोगे पापों से मुक्त मतलब पापों से मुक्त, सिंपल हो गया, नहीं मगर इतना सिंपल नहीं है। तो पाप के भी दो मतलब होते हैं संस्कृत में, एक मतलब होता है पाप का आपके पाप कर्म, दूसरा मतलब दुष्कृति पाप कर्म, दूसरा मतलब होता है पाप का वो सारी क्रियाएं जो भक्ति में बाधक हैं उनको हटा दूंगा मैं अपनी कृपा से, वो पाप के ये दो मतलब है। सबसे बड़ा पाप क्या, सबसे बड़ा पाप यही तो है ना, वो सारी क्रियाएं जो भक्ति में रोक रही हैं हमें, वही तो पाप हो गया। सो कृष्णा कह रहे हैं मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हारी भक्ति में कोई भी रुकावट आएगी मैं उसको हटा दूंगा, मैं हटाऊंगा, चिंता मत करो, मेरी शरण लो तुम निष्कपट रूप से। मेरी शरण लेने का मतलब क्या है कि भगवान पे टंग जाए, शरण लेने का मतलब क्या होता है वो भी समझना पड़ेगा। शरण लेने का मतलब नहीं है कि भगवान के पास जाके बस पकड़ के बैठ जाओ, हे कृष्णा मैं आपकी शरण में हूं अब मैं हिलूंगा नहीं यहां से। शरण लेने का मतलब है कि एक्चुअली जो हम सोच रहे हैं उसका उल्टा है, हम सोचते हैं शरण लेने का मतलब कि भगवान हमारा ध्यान रखेंगे, नहीं मगर एक्चुअली शरण लेने का मतलब है कि हम भगवान का ध्यान रख रहे हैं, ये शरण लेने का मतलब है, हम भगवान का ध्यान रखते हैं, हम भगवान की सेवा और भगवान के आनंद का ध्यान रखते हैं, भगवान हमारा ध्यान रखें हम इसकी, भगवान रखते हैं अपने आप ध्यान मगर हम चाहते नहीं कि भगवान हमारा ध्यान करें, समझे भक्ति इसको कहते हैं। अब ये थोड़ा ना चाहोगे कृष्णा मेरा ध्यान रखो, ये कहना ठीक है, क्यों ठीक नहीं है, अरे कृष्णा मेरा ध्यान नहीं रखेंगे तो किसका रखेंगे, नहीं समझे, इसलिए ठीक नहीं है। हम बिल्कुल त्रिनादपि सुनी चेना, हम इंपॉर्टेंट नहीं है, हम यूजलेस है, हम जीरो है, हीरो कृष्णा है, हम जीरो है, हमें समझना पड़ेगा। मनु संहिता में लिखा है कि अवमन्यते, मनु कह रहे हैं कि दो चीजें जरूर करते रहो हमेशा भक्ति में आगे बढ़ना है, भगवान की प्रशंसा और अपनी अवमानता। अवमानता समझते आप लोग, अवमानता होता मतलब कैसे कहेंगे अपनी बेइज्जती, बेइज्जती अच्छा वर्ड नहीं है, अमाने ना मान देना, अपमान तो कैसे कहेंगे किसी को पता हिंदी, अपमानित, या भगवान की प्रशंसा करते रहो अपना अपमान करते रहो, भूल मत जाना अपना अपमान करना, अगर अपना अपमान करना भूल गए सिर्फ भगवान की प्रशंसा करते रहोगे तो अहंकार आ जाएगा, प्रॉब्लम है। इसलिए भगवान ने हमें दो कान दिया, नहीं एक कान से भगवान की प्रशंसा एक कान से अपना अपमान, हमारे दिमाग भी दो होते हैं पता है ना, ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट में भगवान की प्रशंसा, एक पार्ट में अपना अपमान, इसलिए दो दिए हैं, ध्यान रखो। एक करोगे तो सहजिया बन जाओगे, प्रॉब्लम है, देयर कैन बी प्रॉब्लम्स। सो शरण लेने का मतलब ये होता है, शरण लेने के, मैं ये सब क्यों बता रहा हूं आपको, ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि किताब के हर शब्द का मतलब जो हम समझते हैं वो नहीं होता जनरली, इसलिए साधु संघ की बहुत जरूरत होती है। बिना साधु के संघ के हमारे कॉन्सेप्ट्स इतने नॉनसेंस होंगे, इतने उल्टे फुलटे होंगे, भक्ति में एडवांस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तभी तो साधु संघ ले रहे हैं। तो शरणागति के दो मतलब हो गए कि हम भगवान का ध्यान रख रहे हैं, हम ये नहीं चाहते भगवान हमारा ध्यान रखे, और दूसरा मतलब है कि हम हमेशा भगवान की प्रशंसा करते हैं और अपना अपमान करते रहते हैं। हे कृष्णा मैं यूजलेस हूं, मैं जीरो हूं, आप हीरो हो, दैट्स गुड। जिस दिन आपको अपने आप को हीरो कहने में मजा आ रहा है, उस दिन समझ लो आपकी भक्ति खत्म हो गई, फिनिश, वहीं फिनिश हो गई। जिस दिन आपको ये मजा आ रहा है कहने में मैं जीरो हूं, मैं नॉनसेंस हूं, दुनिया की सारी गाली मेरे लिए, और आप अपने गाली देके नाच रहे हो, तो समझ लो भक्ति आ गई। रियली मैं नहीं कह रहा, चैतन्य चरितमृत में और अद्वैताचार्य कह रहे हैं, अद्वैताचार्य कह रहे हैं, वो नाच रहे थे कि आई एम अ यूजलेस पर्सन एंड ही वाज डांसिंग, ही वाज हैप्पी। किसी को मजा आता है अपने अपने अपमान करने में? किसी को आ रहा है मजा? किसी को मजा नहीं आएगा, मगर भक्तों को आता है। क्यों आता है? मैं आप कहोगे ये क्यों है, अपना अपमान क्यों करें? नहीं, बड़ी अजीब सी बात है, नहीं भगवान की प्रशंसा करना ठीक है, अपना अपमान क्यों करें? तो एक पॉइंट है कि तो अहंकार आ जाएगा, नहीं, एक तो सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा पॉइंट यह है कि जब हम अपना अपमान करते हैं, अपना अपमान करना भी भगवान की प्रशंसा ही है, समझे? जब भगवान देखेंगे कि ये अपनी भक्ति का श्रेय अपने आप को नहीं दे रहा, ये अपनी भक्ति का श्रेय किसको दे रहा है? मुझे दे रहा है। हे कृष्णा मैं जो भी हूं आपकी वजह से हूं, मेरे में जो भी थोड़ी सी भक्ति है, जो भी शक्ति है, जो भी बुद्धि है, वो आपकी वजह से है। जहां तक मेरा सवाल है, ना मुझे धर्म आता है, ना मेरे में कोई अच्छी आदत है, शक्ति बुद्धि ही ना, मेरे में कुछ भी नहीं है, तो कृष्ण को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? कृष्ण कहेंगे ओह ही इज अ गुड डिवोटी। इसलिए दोनों चीजें करना, इसलिए शरणागति का मतलब ये हो गया। सो माम एकाम शरण व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, अगर हम ऐसे करते रहेंगे भगवान बाकी प्रॉब्लम्स अपने आप हटा देंगे, चिंता मत करो। भक्तों का संग करो, सुनो, चैंटिंग करो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है संसार में चिंता मत करो। अगर हम सिंसियर हैं तो भगवान भी सिंसियर है। अगर हम भगवान की सेवा करते रहेंगे तो भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करते हैं। बल्कि हम भूल जाते हैं भगवान की सेवा करना, मगर भगवान कभी नहीं छोड़ते मौका अपने भक्तों की सेवा करने का, भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे, हम तो फिर भी छोड़ देते हैं। सुबह आरती है, ओ उठेगा कौन, छोड़ दो, ऐसा होता है कभी कभी। सो हम तो छोड़ देते हैं अवसर भगवान की सेवा का, मगर भगवान अवसर कभी नहीं छोड़ते भक्तों की सेवा करने का, भगवान तो ढूंढते रहते हैं कब मैं इसकी सेवा करूं। यह था माम प्रबद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम, जिस तरह से जो मेरी सेवा करेगा उस तरह से मैं उसको फल दे दूंगा, मैं भी उसकी सेवा कर दूंगा उसको फल देकर। तो कृष्णा तो बहाना ढूंढते हैं अपने भक्तों की सेवा करने का, बहाना ढूंढते हैं, मगर हम ऐसा नहीं करते, नहीं, हम बहाना ढूंढते हैं भगवान की सेवा से मुक्त होने का, किसी तरह सेवा से छुटकारा मिले, जल्दी खत्म हो जाए, दैट्स बैड। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के एक शिष्य थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, आई थिंक ही वॉज इन दार्जिलिंग यहीं पर, तो वो अपने उनका नाम भूल गया, प्रोफेसर थे, तो वो क्या कर रहे थे, वो अपने अपने कॉलेज में पढ़ाने जा रहे थे, सूट वूट पहन के, पूरा सूट वूट प्रॉपर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आ रहे थे अपने शिष्यों के साथ। उस टाइम बारिश होती है ना यहाँ पे बहुत, ओ ही वॉज इन चेरापूंजी, चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो वहां पे पूरी बारिश होती, कीचड़ थी, सारे सूट वूट पहने थे, कॉलेज में लेक्चर देने जा रहे हैं, जैसे ही उनके गुरु आए भक्ति सिद्धांता, वहीं पे लेट गए कीचड़ में। तो भक्ति सिद्धांता ने कहा, भाई क्या कर रहे हो तुम, उठो, तुम्हें कॉलेज जाना है, तुम्हारे सारे कपड़े गंदे हो गए वो। तो उन्होंने बोला, देखिए, उन्होंने बोला, गुरु महाराज कॉलेज ये कपड़े दोबारा आ जाएंगे, मगर सेवा का अवसर दोबारा नहीं आएगा, वो कैसे लाऊंगा भाई, इसलिए मैं उसको खोना नहीं चाहता। समझे, ये होता है भक्त। सो भगवान इस तरह से भक्तों की सेवा करते हैं। मोक्षिष्यामि मां सोचा, मैं तुम्हें मोक्ष इस संसार से दिला दूंगा। मोक्ष का मतलब क्या है यहां पर, इसको भी समझना पड़ेगा। नहीं, आज से आप गीता पढ़ोगे ना तो आपको हर शब्द पे शक होने लगेगा, अगर आप मेरी बात सुनोगे तो। इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड गीता। मोक्ष का मतलब होता है, मोक्ष का मतलब क्या होता है, मोक्ष के दो मतलब है, नहीं एक तो, एक्चुअली तीन मतलब है मोक्ष के। एक मतलब है पापों से मुक्ति, ये मतलब हो गया। दूसरा मतलब है जन्म मृत्यु से मुक्ति। चार मतलब है। तीसरा मतलब है दुखों से मुक्ति। और चौथा मतलब है कि मोक्ष का मतलब है कि भगवान के चरणों की प्राप्ति, जो मोक्ष देने वाले हैं उनकी प्राप्ति करना, वो भी मोक्ष होता है। अविद्या से मुक्ति, अविद्या समझते हो ना, अविद्या से मुक्ति। अविद्या क्या है कि मैं कृष्ण का दास नहीं हूं, ये जो भ्रम है इससे मुक्ति हो जाएगी, हमें समझ आ जाएगा कि मैं कृष्ण का दास हूं, इसको भी मोक्ष कहते हैं। सो अल्टीमेट मोक्ष तो अविद्या से मुक्ति हो गई। नहीं तो कृष्ण कह रहे हैं, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, केवल तुम्हारे पाप ही नहीं कट जाएंगे, केवल पापों से मुक्ति नहीं दूंगा, केवल दुख से मुक्ति नहीं दूंगा, केवल मैं जन्म मृत्यु से मुक्ति नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अविद्या से मुक्ति दे दूंगा। उसको असली मोक्ष कहते हैं। इसलिए कृष्ण यहां पे कह रहे हैं, मोक्ष शामी मां सोचा, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। मोक्ष मतलब, अविद्या से मुक्ति मतलब भक्ति, असली मोक्ष मतलब भक्ति। हमें समझ आ जाएगा मैं कृष्ण का दास हूं। मां सोचा, कृष्ण कह रहे हैं डरो मत। ये क्यों कह रहे हैं डरो मत, ये क्यों कह रहे हैं, दैट्स फनी। नहीं, कृष्ण कह रहे हैं मेरी शरण लो, डरो मत। कृष्णा समझ नहीं आ रहा कुछ, अब ऐसा क्यों कह रहे हो डरो मत, हमें तो कोई डर नहीं लग रहा, मगर कृष्णा कह रहे हैं डरो मत। पता है क्यों, क्योंकि कृष्ण को पता है कि हमें डर लगेगा। अभी नहीं लगे, अभी नहीं लगा तो आगे लगेगा, जब भगवान परीक्षा लेंगे तो लगेगा, अभी परीक्षा नहीं ली इसलिए हमें नहीं लग रहा, मगर भगवान परीक्षा लेंगे। मैंने बताया था, हर एक की नहीं लेंगे, जो अच्छा बच्चा होगा उसकी लेंगे, जो अच्छा डिवोटी होगा उसकी लेंगे, जिसकी भक्ति कच्ची होगी उसकी नहीं लेंगे, उसकी परीक्षा ले लेंगे तो वो तो भक्ति छोड़ के भाग जाए। इसलिए भगवान कहते हैं, छोड़ो यार इसकी मतलब अभी, मगर भगवान लेते हैं। सो परीक्षा लेंगे तो भगवान कह रहे फिर मत डरना, अभी तो सब अच्छा लग रहा है, नाइस प्रोग्राम, प्रसादम, चैंटिंग, डांसिंग बहुत अच्छा है, मगर मगर भगवान जब परीक्षा लेंगे तो इतना अच्छा लगेगा नहीं। अब वो परीक्षा पता है क्या होगी, वो परीक्षा ऐसे भी होती है कि भक्तों से लड़ाई हो जाएगी आपकी, आपको लगेगा ये बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार है। वो परीक्षा का समय है कि हम अपने मन को समान रखें और ये देखना सीखें कि एक्चुअली सब अपने स्वभाव से काम कर रहे हैं, और पंडिता समादर्शन, और हमें तरो रेव सहिष्णुता, हमें पेड़ से भी ज्यादा सहनशीलता होकर सबको आदर देते हुए अपनी भक्ति करनी चाहिए। एक हरे कृष्ण, ओके, जस्ट सी दैट फोन, ये भी परीक्षा है, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, नहीं। सो ये होता है मां सोचा, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं डरो मत, आगे के लिए वार्निंग दे रहे हैं, शायद अभी के लिए आपको समझ नहीं आया, डरो मत, मगर आगे के लिए वार्निंग दे रहे हैं, देखो आगे हो सकता है प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम आएंगी आएंगी, प्रॉब्लम ऐसा नहीं है नहीं आएंगी, मगर अगर आप भगवान की भक्ति करते रहोगे तो उन प्रॉब्लम को पार करने की शक्ति भी आ जाएगी। कृष्णा कह रहे हैं ना कि अहम तुम सर्व पापेभ्यो, मैं सारी प्रॉब्लम हटा दूंगा अगर तुम करते रहोगे सही से। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं डरो मत प्लीज, मेरे साथ रहो हमेशा। सो ये श्लोक है। तो इस तरह से हम गीता को शब्द का हर का मतलब देखना होगा, फिर हम समझ सकते हैं, वो मतलब हमें भक्त बताएंगे, तब हम धीरे धीरे उन चीजों को समझ जाएंगे। सो या आई विल जस्ट स्टॉप हियर। सो मैंने क्या बताया कि किसी भी किताब को समझने के लिए एक्चुअली सात चीजें देखनी होगी, नहीं सात है ना, एक तो तात्पर्य लिंगम छह चीजें प्लस एक ये हर शब्द का अर्थ। उसको बोलते हैं निरुक्ति, निरुक्ति देखनी पड़ेगी। छह चीजें उपसंहार, उपक्रम, अभ्यास, अपूर्वता फलम, अर्थवाद, उपपत्ति और सात छठा और सातवा निरुक्ति। जब इस सातों चीजें देखेंगे तब गीता समझ आएगी। अगर हम हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है समझने की तो प्रभुपाद जी की टीका है, उसमें फिर भी काफी कुछ आसान हो गया है, आप पढ़ सकते हो। मगर प्रॉब्लम यह है कि अगर प्रभुपाद जी की टीका पढ़ोगे, प्रभुपाद जी की किताबों में सब कुछ है, सब कुछ है वहां, मगर देखने वाला चाहिए, आपको दिखाई नहीं देगा वहां पे। नहीं, सब कुछ होना एक बात है, उसको एप्रिशिएट करना दूसरी बात होती है। नहीं है, भगवान भी है मगर हर व्यक्ति भगवान को उस दृष्टि से नहीं देख रहा जिस तरह से एक भक्त देख रहा है। नहीं, उसी प्रकार प्रभुपाद जी किताबें हैं मगर उसमें आपको दिखाई नहीं देगा। मगर अब पढ़ो, अब आप जाके श्लोक पढ़ना, इसका तात्पर्य प्रभुपाद शायद ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे, उपसमार, उपक्रम, निरुक्ति, ये जो मैंने शब्दों की व्याख्या बताई है, मगर एग्जैक्टली ये शब्दों का मतलब लिख रहे हैं। आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं वहां पर, सर्वधारण प्रतिज्ञा के श्लोक में। और दूसरा आप होमवर्क करना कि हर अध्याय का आखिरी श्लोक देखना, और देखना कि हर अध्याय का आखिरी श्लोक भगवान के चरणों तक ही पहुंच रहे। सो दैट्स हाउ यू हैव टू रीड गीता। मैंने गीता पे बोल दिया क्योंकि इन्होंने रिक्वेस्ट की थी गीता पे बोलो, तो टाइम भी कम है, तो मैंने सोचा कि आज से कल करे सो आज करे सो अब पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। सो आई जस्ट स्टार्टेड गीता फ्रॉम दिस सेमिनार। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई क्वेश्चन है? या एनी क्वेश्चंस? हाँ हिंदी में बोल, बांग्ला में आम ही बांग्ला बूझते पा रहे, बोलते पा रहे ना। नारायण शिला, नारायण शिला अर्च विग्रह रूपी है, मूर्ति रूपी है। हाँ बस ओके। श्री प्रभुपाद की जय।